नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद भी नहीं करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे गए। 100 से अधिक भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोसी देश के आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा भी नहीं देनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस वॉफ शिकोर्सकी के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड के लिए भारत क्षेत्र अनजान नहीं है और यह सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भले भांति परिचित है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के क्षेत्रीय और घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। डॉ जयशंकर ने कहा है कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस ने उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था।
पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूं।
डॉ जयशंकर ने कहा कि मध्य यूरोप में पोलैंड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब डॉलर है, जिसमें पिछले एक दशक में लगभग 200% की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया है कि पोलैंड में भारतीय निवेश 3 अरब डॉलर से अधिक हो गई है, जिससे पोलैंड में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, उसके बाजार का आकार और निवेश केंद्रित नीतियां पोलैंड के कारोबारियों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराती है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वे भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्र तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा हाल ही में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदानों पर आधारित है, जिनमें 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस तथा संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की यात्राएं शामिल हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे ढांचों द्वारा सहायता प्राप्त मजबूत और बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। वार्ता में पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दुबई से विनोद कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश उनकी लोगों की बहुत सराहना करता है, जिनका व्यवसायिकता और हौसला संकट के समय में सबसे आगे रहता है। उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ आपदा की तैयारियों और प्रतिक्रिया में एक बेंचमार्क के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी एनडीआरएफ दिवस की शुभकामनाएं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के हाल के बयानों के बीच यूरोपीय नेताओं ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने नेटो के सचिव जनरल मार्क रूट और फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली के नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सभी ने रणनीतिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वचनबद्धता व्यक्त की तथा यूरोप एकजुटता और पूरे संकल्प के साथ जवाब देगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा है कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएंगे। श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जयराम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी।
अरुणाचल प्रदेश ने पहली बार मेघालय स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियड INMO 2026 में हिस्सा लिया, जिसमें खोंसा के रामकृष्ण शारदा मिशन गर्ल्स स्कूल की 6 छात्राओं और तेजू के विवेकानंद केंद्र विद्यालय की 1 छात्रा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह ऐतिहासिक भागीदारी एक मजबूत गणितीय संस्कृति यानी मैथमेटिकल कल्चर को प्रेरित कर समस्या समाधान और तार्किक सोच कौशल को तेज करेगी और ज्यादा छात्रों को गणित में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस बीच INMO 2026 के नतीजे फरवरी मार्च 2026 में घोषित होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने घोषणा की है कि पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2026 का आयोजन 20 जनवरी 2026 से आगामी 22 तारीख तक चांगलांग जिले के नामपोंग में भारत म्यांमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास किया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए सीमा पार संबंधों, पर्यटन और लोगों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा। महोत्सव के तहत दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के साथ ही युद्ध के दौरान किए गए बलिदानों और ऐतिहासिक स्टील वेल रोड के निर्माण को सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए आज नामांकन भरे गए। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मणन द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की समय सीमा शाम 4 बजे तक ही थी। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहा है। इसमें 3,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन भी वहां लगाए गए हैं। अजंता एरोला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्मपाणि पुरस्कार इस वर्ष दिग्गज संगीतकार इलैया राजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार में पद्मपाणि स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2,00,000 रूपये की नकद राशि शामिल है। 11वां अजंता एरोला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा। अजंता एरोला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में भी मदद नहीं करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।